इंटरव्यू में वैदेही के सवालों से राघवेंद्र को समझ में आ गया था कि वो किसी खास वजह से उससे आड़े टेढ़े सवाल पूछ रही थी। ब्रेक के बाद फिर से इंटरव्यू शुरू किया गया, जहां राघवेंद्र ने इंटरव्यू की कमान अपने हाथ में लेने का फैसला किया। कौन हो तुम वैदेही रघुवंशी? मैं तुम्हारे बारे में पता लगा कर रहूंगा। तुम्हारे बिछाए चक्रव्यूह में तुम्हें ही नहीं फंसा दिया तो मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह नहीं, राघवेंद्र ने अपने मन में सोचा। ब्रेक के बाद फिर से सबका वेलकम करने के बाद वैदेही ने राघवेंद्र की तरफ रुख किया। वो कुछ बोल पाती उससे पहले राघवेंद्र खुद से बोल पड़ा, अच्छा वैदेही जी, हमारा इंटरव्यू तो बहुत हुआ, लोगों ने बहुत जान समझ लिया हमारे बारे में, लेकिन अब आप पर आते हैं। जी मैं कुछ समझी नहीं, वैदेही ने हैरान होकर पूछा। भाई हमने देखा कि आपकी पॉपुलैरिटी भी कुछ कम नहीं है, जनता आपसे बहुत प्यार करती है और आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती है। आप तो सबका इंटरव्यू ले लेती हैं, लेकिन कभी आपको इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिला। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है राघवेंद्र जी, अब आप मुझसे मेरा काम छीनने की कोशिश कर रहे हैं, वैदेही ने मजाकिया तरीके से कहा। अरे नहीं, हम अभी इस काबिल कहाँ, बोलते हुए राघवेंद्र ने हाथ जोड़े। अच्छा बताइए ना वैदेही जी, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपके माताजी और पिताजी क्या करते थे? राघवेंद्र वैदेही के परिवार के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। उसके इस सवाल के पूछते ही वैदेही की आंखों के सामने उसके मम्मी पापा का चेहरा घूमने लगा। एक पल के लिए दुनिया उसकी आंखों के सामने गोल घूम रही थी। आपने बताया नहीं वैदेही जी, राघवेंद्र की आवाज़ सुनकर वैदेही का ध्यान टूटा। उसने खुद को संभाला। जी नहीं, आप ये सब करके मेरे सवालों से बच नहीं सकते। चलिए अब बात परिवार की आ ही गई है तो आप अपने परिवार को सबसे क्यों नहीं मिलवा देते? वैदेही ने स्थिति को संभालकर बात को बदला। परिवार का नाम आते ही आरती और सुमित्रा अपनी अपनी साड़ियां और बाल ठीक करने लगीं। राघवेंद्र भी अच्छे से जानता था कि उसका परिवार इस इंटरव्यू के लिए बहुत उत्साहित था, इसलिए वो उनकी इच्छाओं का मान रखते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और वैदेही के साथ अपने घर वालों का परिचय देने पहुंचा। जी इनसे मिलिए, ये है मेरी माँ सुमित्रा सिंह, राघवेंद्र ने अपनी माँ का परिचय देते हुए कहा। आज हम जिस मुकाम पर हैं उसकी एकमात्र वजह मेरी आई है। हमारे परिवार में शिक्षा को कोई खास महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन हमारी आई ने सबके खिलाफ जाकर हमें पढ़ाया लिखाया और साथ ही कभी भी हमारे किसी काम के लिए हमें नहीं डांटा। राघवेंद्र की बात सुनकर वैदेही ने एक नज़र सुमित्रा की तरफ डाला और सोचा, ओह तो ये मैडम है इस बुराई की जड़। कहते हैं एक माँ अपने बेटे को कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलने देती, फिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि इन्होंने कभी राघवेंद्र को नहीं रोका? वैदेही सुमित्रा से मिलकर हैरान थी। उसके बाद राघवेंद्र ने अपने भाई भाभी और साथ में लल्लन का भी परिचय करवाया। सबसे आखिर में वो मानव का परिचय कराते हुए बोला, और ये मेरा सबसे छोटा भाई मानव प्रताप सिंह है। भले ही हम दोनों ने साथ में ज्यादा वक्त नहीं बिताया होगा, लेकिन मैं कभी शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता कि मैं इससे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, बोलते हुए राघवेंद्र की आंखें नम हो गईं। सबसे परिचय होने के बाद वैदेही ने इंटरव्यू को ज्यादा नहीं खींचा और जनता के थोड़े बहुत सवाल लेकर उसको खत्म कर दिया। वो जिस मकसद से ये इंटरव्यू लेना चाहती थी वो कामयाब नहीं हो पाया। उसे अपनी नाकामयाबी पर काफी गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन सबके सामने वो कुछ नहीं कह पा रही थी। यशवर्धन की तरह ही राघवेंद्र के घर पर भी इंटरव्यू के बाद एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। ना चाहते हुए भी वैदेही को उस पार्टी का हिस्सा बनना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ प्रतीक शर्मा यशवर्धन सिंह के घर पर आए हुए थे, जहां पर वो यशवर्धन इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे थे। वैदेही का मैसेज आया था और उसने बताया था कि इस इंटरव्यू को हैंडल करना बहुत मुश्किल था, प्रतीक ने बताया। बस यही हाल पार्टी में रहता है, वो किसी की नहीं सुनता और अपनी मनमानी करता रहता है, लेकिन फिर भी वैदेही जी ने अच्छा काम किया। हमें लगता है कि उसने अच्छा काम किया, लेकिन वो खुद अपने काम से सेटिस्फाई नहीं है। आप उसे नहीं जानते, जब तक कोई काम उसकी नज़र में परफेक्ट नहीं होता तब तक वो उसे अधूरा ही मानती है। लेकिन राघवेंद्र जैसे इंसान से निपटना आसान भी तो नहीं है। आपने देखा ना कि कैसे बीच इंटरव्यू में वो वैदेही के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। अगर उनकी जगह कोई और होता तो उसके जाल में फंस जाता और अपने बारे में सब कुछ बता देता, लेकिन अच्छा है कि वैदेही जी ने कुछ नहीं बताया, इससे उनका परिवार भी सुरक्षित रह सकता है। बाकी आप उनकी चिंता मत कीजिए, उनकी सिक्योरिटी का भी मैं देख लूंगा, यशवर्धन की बात सुनकर प्रतीक ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। उसने हल्की उदासी के साथ कहा, यशवर्धन जी वैदेही का कोई नहीं है, शायद यही वजह है कि उसे किसी को खोने का डर नहीं है और यही उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। प्रतीक से वैदेही का कोई नहीं होने की बात सुनकर यशवर्धन ने धीमी आवाज में सॉरी कहा और फिर पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि वैदेही जी की फैमिली इस वक्त कहाँ मौजूद है? आपने कहा कि उनका कोई नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, सुनने वालों को एक बार के लिए झटका लगता है, अक्सर माँ बाप नहीं होते हैं तो बाकी का परिवार किसी भी बच्चे के लिए मौजूद होता है, लेकिन वैदेही के केस में ये नहीं है। तो क्या वो अनाथ आश्रम में? बोलते हुए यशवर्धन रुक गया। नहीं, वैदेही अनाथ आश्रम में भी नहीं पली बढ़ी है, उसके पिता का स्वभाव थोड़े अलग टाइप का था। उसने बताया था एक बार कि उन्होंने सबसे रिश्ते तोड़ दिए थे, जिसका कारण वो खुद नहीं जानती।
वो अपने माँ बाप के साथ रहती थी, उनके बीच भी रिश्ता अच्छा नहीं था, जिससे वैदेही का बचपन भी बहुत बुरा बीता था। एक वक्त ऐसा आया जब दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे और वैदेही अकेली रह गई, प्रतीक ने मोटा मोटा बता दिया। कुछ देर हल्की फुल्की बातचीत करने के बाद प्रतीक वहां से जा चुका था, लेकिन यशवर्धन के मन में वैदेही को जानने की और भी इच्छा जागृत हुई। पता नहीं क्यों, लेकिन प्रतीक जी की बात पर विश्वास करने का मन नहीं कर रहा है। सोचते हुए उसने आनंद देसाई को फोन मिलाया और कहा, क्या वैदेही रघुवंशी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हो? और उसकी जरूरत आज क्यों पड़ गई? सामने से देसाई जी ने पूछा। आप तो हमेशा से जानते हैं कि हमें वैदेही जी अपनी लगती है, एक जुड़ाव सा हो गया है उनके साथ, तो चाहते हैं कि उनके बारे में हर एक बात जान लेते ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना हो। यशवर्धन की बात सुनकर देसाई जी हल्का सा हंसे और फिर बोला, लगता है आपके मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिनों बाद शहनाइयों के बजवाने की तैयारियां भी करनी पड़ेंगी। देसाई जी की बात सुनकर यशवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने आगे कुछ नहीं कहा और फोन कट करके सोने चला गया। राघवेंद्र की हवेली में सभी मीडिया पर्सन के लिए पार्टी का आयोजन किया गया था। पार्टी में राघवेंद्र के ज्यादा आदमी तो नहीं थे, लेकिन उसका पूरा परिवार मौजूद था। ए आरती, चलना, चलकर उस लड़की से मेरे राघव के रिश्ते की बात करके आते हैं, सुमित्रा आरती के पास जाकर बोली। आरती ने आंखें घुमाई और जवाब दिया, आई मुझे नहीं लगता कि उसकी आपके बेटे के साथ बनने वाली है। देखा नहीं कैसे आड़े टेढ़े सवाल पूछे जा रही थी, और दादा तो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे अभी खा जाएंगे। अरे वो तो कैमरा ऑन था, वरना डॉली का पता नहीं, लेकिन इस लड़की की अर्थी जरूर यहाँ से उठ जाती। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे राघव को भी वो पसंद है। तूने देखा नहीं कि जब वो उसे मनाने के लिए बाहर आई थी तो झट से उसकी बात मानकर अंदर आ गया था। आई, आप अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद कीजिए और मुझे चैन से खाना खाने दीजिए, मैं आपके साथ कहीं नहीं आने वाली। आरती के मना करते ही सुमित्रा ने उसकी तरफ मुंह बिगाड़ा और वहां से वैदेही की तरफ बढ़ गई। आरती हाथ में प्लेट लिए ही उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे आ रही थी। अरे आई, सुनिए तो सही, उसने पीछे से आवाज लगाई।
इस आरती का कुछ नहीं हो सकता, कितनी बार कहा है कि किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो पीछे से आवाज लगाकर रोकते नहीं। अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, वरना मेरा काम नहीं होगा। सुमित्रा ने उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया और जल्दी से वैदेही के पास चली गई। वैदेही ने नकली मुस्कुराहट के साथ दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्ते कहा। जवाब में सुमित्रा ने भी उसके सर पर हाथ फिराकर उसे आशीर्वाद दिया। अच्छा बेटी, तुम्हारी शादी हो चुकी है? सुमित्रा ने सीधे सीधे पूछा। जी नहीं, वैदेही ने जवाब दिया। चलो फिर तो अच्छा है। अच्छा, तुम्हारी मम्मी पापा के फोन नंबर मिल सकते हैं? वैदेही उसके कहने का मतलब नहीं समझ रही थी और हैरानी से उसकी तरफ देखे जा रही थी। वहीं आरती को उसे रोकने का कोई तरीका नहीं मिला तो वो दौड़कर मानव के पास गई। देखिए ना मानव दादा, आई कहाँ बैठी हैं, आप जाकर उन्हें समझाइए। मानव ने सुमित्रा को देखने के लिए नजरें घुमाई तो उसने अपनी आई को वैदेही के पास पाया। लगता है उन्हें वैदेही जी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई हैं, तभी बात करने के लिए उनके पास चली गई। क्या गलत है इसमें? आई वैदेही जी से बात करने के लिए नहीं, बल्कि राघव दादा का रिश्ता लेकर गई हैं। वो मेरी बात तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, अब आप ही रोकिए ना उन्हें। मानव ने उसकी बात पर हामी भरी और तेज कदमों से चलते हुए वैदेही और सुमित्रा के पास पहुंचा। आई, आप यहाँ क्या कर रही हैं? दादा आपको कब से ढूंढ रहे हैं? मानव ने जबरदस्ती सुमित्रा को उठाया और उसे वहां से ले जाने लगा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी सी बात ही तो करने आई हूँ, तेरे दादा को बोल दो कि थोड़ी देर इंतजार कर लेगा, सुमित्रा ने कहा और फिर से टेबल पर बैठ गई। हे बप्पा, अब मैं आई को कैसे रोकूं, कहीं ये कोई गड़बड़ ना कर दे, मानव ने अपना सिर पकड़कर सोचा। तो वहीं वैदेही के मन में भी मानव को लेकर कई बातें चल रही थी। मैं कब से इससे बात करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। इंटरव्यू सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसके जरिए मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अच्छा हुआ ये खुद ही चलकर मेरे पास आ गया, वैदेही ने अपने मन में कहा। मानव बार बार सुमित्रा को वहां से ले जाने की जिद कर रहा था, जबकि वैदेही को भी यही लगा कि सुमित्रा वहां से चली जाएगी तो वो मानव से अच्छे से बात कर पाएंगे। उसने उन दोनों के बीच में बोला, आई थिंक आपको चले जाना चाहिए, राघवेंद्र जी को आपकी जरूरत होगी। इंटरव्यू में भी वो बता रहे थे कि आप उनके लिए कितने खास हैं, हम लोग फिर कभी बात कर लेंगे। उसके ऐसा कहने पर सुमित्रा ने उसकी बलैया लेकर बोला, आहो तुम्हें अभी से उसकी कितनी फिक्र है, बप्पा तुम जैसी बहू सबको, नहीं नहीं सिर्फ मुझे को दे, मैं अभी आती हूँ, तुम कहीं जाना नहीं, सुमित्रा ने कहा और वहां से चली गई। वैदेही को उसकी कहने का मतलब साफ समझ आ गया था, लेकिन फिर भी उसने अनजान बनते हुए मानव से पूछा, अभी अभी वो क्या बोलकर गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे कुछ नहीं, आई की आदत है हर बात पर सबको दुआएं देने की, आप कंटिन्यू कीजिए। वैसे सच कहूं तो अकेले कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, इफ यू डोंट माइंड कि आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं? वैदेही के पूछने पर मानव ने हामी भरी और वहीं पर बैठ गया। वैदेही को मानव से बात करने का मौका मिल चुका था, राघवेंद्र दूर से उन दोनों के ऊपर नजर बनाए हुए था।